मेरे युवा साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के तहत में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया है, इस पर बहुत इत्मीनान के साथ बात करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी सूचना, जो ऑनलाइन क्लासेस के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए सूचना यह है कि जो आपको महीने भर का जो करंट अफेयर्स होता है उस पर जो मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है शाम में, यानी कि ऑडियो लेक्चर के रूप में, वह आप सबको प्रोवाइड कर दिया गया है, इस सूचना है। दोस्तों, इसी के साथ ही एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स से मुझे पता लगता है कि वो करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। मित्रों, आपको मैं एक टेस्टिंग के लिए तथ्य दे रहा हूं, परीक्षण इस बात का कि आपको ये जो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो एवरेज हार्डली एक घंटे का होता है, आपने महसूस किया होगा कि एक घंटे का ही जनरली रखा जाता है, है ना, 55 मिनट से लेकर एक घंटे 5 मिनट तक का उसका समय होता है, और उस एक घंटे के वीडियो में या कह लीजिए लेक्चर में आपको प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से और संदर्भ की दृष्टि से, रेफरेंस की दृष्टि से बातें बताई जाती हैं, है ना, और उसमें एक महीने को समेटा जाता है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको कुछ महीने के नाम बता रहा हूं और इनमें देखिए जाकर के कि किस किस के बारे में बातें कही गई है और किस प्रकार से बातें कही गई हैं, और फिर आप इन्हें, जो मैं नाम बता रहा हूं, इन्हें इस साल का जो मेन एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जाकर के ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या इन पर प्रश्न पूछे गए हैं। आपको आश्चर्य होगा। उदाहरण के तौर पर आप जनवरी 2020 के एडिशन को सुनिए, मैं एडिशन की बात कर 2020 के एडिशन को सुनिए, उसमें स्पीकर के बारे में मैंने बात की है, और केवल टॉपिक पर मत जाइए कि स्पीकर के बारे में बात कर दी तो बात खत्म हो गई, नहीं, मैंने किस एंगल से बात की है और मैंने उस पर जोर दिया है कि नहीं दिया है, कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको बताया है कि नहीं बताया, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि सीधे एक टॉपिक मैंने लिया और उस टॉपिक को सिलसिलेवार कर दिया, नॉट एट ऑल, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो हुआ था और उस संघ को लेकर के, इस पर मैंने मार्च 2020 के मैगजीन में आपसे बात की, मैगजीन मैं कह रहा हूं, अदरवाइज वो एक तरह से लेक्चर है। इसके बाद तीसरा है जल शक्ति अभियान, जिसके बारे में मैंने जुलाई 2019 में बात की थी, और इसके बाद सूचना का अधिकार संरक्षण विधेयक जो संशोधन विधेयक आया था इसके बारे में भी मैंने जुलाई 2019 में बात की थी, चूंकि ये उसी समय हुए थे तो स्वाभाविक है कि मुझे उस पर बात करनी थी। लेकिन केवल बात करने की बात नहीं है, आप उस जाकर के जानने की कोशिश कीजिए कि मैंने किस लैंग्वेज में बात की है, यानी कि ये जोर दिया है कि नहीं दिया है कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात, और दूसरी बात मैंने किस कोण से बात की, एंगल से बात की है। दोस्तों, आप ऐसा कीजिएगा, ऐसा करने कराने के पीछे मेरा एक मकसद है, मकसद मेरा केवल ये है, बहुत ही विनम्र सा और बहुत ही पवित्र मकसद ये है कि यदि आपको किसी भी बात पर विश्वास हो जाता है तो आपकी मित्रता उससे बढ़ जाती है, आप उसका सही सही उपयोग करने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि आपका उस पर विश्वास है। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस डॉक्टर के पास के बारे में आपके पास विश्वास होता है उसी के पास आप जाना पसंद करते हैं। तो यदि ये जो करंट अफेयर्स पर जो आपको प्रोवाइड किया जाता है जो ऑडियो, अगर इस पर आपका विश्वास हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर आप इसका बहुत सतर्कता के साथ और बहुत प्रेम के साथ इस्तेमाल करेंगे और तभी आप इसका लाभ भी उठा सकेंगे। तो दोस्तों, मुझे यह बात आप सबसे अपने ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट से करनी थी और मुझे विश्वास है कि मैंने आपको तथ्य दिए हैं और इन तथ्यों को आप वेरीफाई कीजिए। यह मत सोच लीजिए कि अरे सर ने कह दिया है तो सही ही होगा, यार कहां सर झूठ थोड़ी बोलेंगे, नहीं नहीं आप वेरीफाई कीजिए, मुझे लगता है कि तब आपका विश्वास ज्यादा गहरा हो सकेगा, सामान्य विश्वास से बात नहीं बनती है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 के बारे में, जिसके बारे में कल मैंने थोड़ी सी बात कही थी, आज इत्मीनान से अब जो भी वक्त बचा है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताने जा रहा हूं कि आप कैसे इस टॉपिक की तैयारी करेंगे। देखिए, इस टॉपिक पर खूब सारे आपको लेख मिलेंगे, कल भी मैंने एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया और जनसत्ता के दो एडिटोरियल कमेंट्स, आज भी मैं आपको एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इस पर आर्टिकल्स भी आएंगे, इस पर आपको चैनल्स पर डिस्कशन भी सुनने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि इतनी सारी जो चीजें आपके सामने आती रहेंगी उनमें से आप अपने लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कैसे डिसाइड करेंगे, और अगर आप इस तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मान करके चलिए कि मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के समय आप भटक जाएंगे। आंसर राइटिंग कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, है ना, ये आर्ट की डिमांड करता है। बेसिकली आंसर राइटिंग इज नॉट ए साइंस, इट्स ए आर्ट, इट्स एन आर्ट, याद रखिए। तो वहां तो आप भटक जाएंगे, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? देखिए, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, राइट? अब सिविल सर्विसेज के का कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सिलेबस आपका स्पष्ट होना चाहिए। जैसे हम राष्ट्रीय राजधानी इस विधेयक को लेते, ये जो विधेयक है आपके सिलेबस में किस तरीके से मौजूद है? सीधे सीधे तो है नहीं। तो अगर जब आप अपने सिलेबस को खंगालेंगे तो कहां आपको इसकी झलक दिखाई देगी, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसकी झलक आपको दो जगह दिखाई देगी जो मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपको तीन जगह दिखाई दे जाए, आई डोंट नो। पहली आपको झलक दिखाई देगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, या जो बात साफ तौर पर संविधान में कही भी गई है, वो है फेडरल स्ट्रक्चर, संघात्मक। हम एक संघात्मक स्वरूप वाले राष्ट्र हैं। आपको मालूम है कि ये संघात्मक स्वरूप क्या होता है? हम फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक केंद्र होगा और राज्य होंगे और उनके बीच में विषयों का बहुत स्पष्ट रूप से विभाजन होगा, और विभाजन कुछ इस तरीके का होगा कि जो राज्य हैं वो राज्य अपने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से काम कर सके। ये फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे वो केंद्र सरकार के पास होंगे, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी संबंध को ले लीजिए, या सेना के मामलों को ले लीजिए। तो ये इस तरह के जो विषय होंगे वो केंद्र के पास होंगे और राज्य अपने ढंग से काम करते रहेंगे। तो मतलब राज्यों की अपनी स्वतंत्रता रहेगी, ऑटोनोमी ऑफ द स्टेट वुड बी सेफ गार्ड, संघात्मक स्वरूप। आप देख रहे हैं कि अभी जो विधेयक पेश किया गया है उसमें किसको लेकर के बहस हो रही है? इसी को लेकर के बहस हो रही है कि यह जो विधेयक है, यह विधेयक बेसिकली वहां जो निर्वाचित सरकार है उसके अधिकारों को समाप्त करके सारे अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए जाएंगे। इसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका प्रतिनिधि होता है? कभी आप जब आंसर राइटिंग के लिखे ना, तो एजेंट शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, आई डोंट नो एग्जामिनर इसे कैसे लेंगे, एजेंट शब्द थोड़ा सा निगेटिविटी लिए हुए है। हमें कहना चाहिए प्रतिनिधि होता है, है ना। एजेंट शब्द में तो फिर यह है कि वो जो कहता है वही मानेंगे, करेंगे, तो उसी की तरफदारी करेंगे। एक तरह से वकील होता है कह सकते हैं आप, लेकिन बेहतर होगा कि आप प्रतिनिधि शब्द का उपयोग करें। तो प्रतिनिधि होता है, तो केंद्र सरकार जैसा कहेगी उसी तरह से उपराज्यपाल करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि राज्यपाल करते हैं, क्योंकि इनकी अवधि निश्चित नहीं होती, वो एक फिर अलग विषय है। तो पहली बात तो यह है कि आपको देखना यह होगा कि यह जो विधेयक है हमारे संघात्मक स्वरूप को मजबूत बनाता है या कमजोर करता है, और अगर कमजोर करता है तो इसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। यानी कि एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मकता की तो बात करता है, लेकिन अभी जो ये विधेयक पेश किया गया है इसका उसके स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो युग समाप्त हो चुका है। अब दूसरा इसका एंगल क्या है? जो दूसरा एंगल है दोस्तों वो डेमोक्रेसी को लेकर के है, एक उत्तरदायी सरकार को लेकर के, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेकर के है। देखिए, जब हम कहते हैं उत्तरदायी सरकार तो वो अमेरिका की तुलना में हम ज्यादा उत्तरदायी हैं, क्योंकि जो सरकार होती है निर्वाचित सरकार वो सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो सदन है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की महापंचायत, जो हम निर्वाचित अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। तो जो पूरी की पूरी जो विधानसभा है, या आप कह लीजिए कि संसद है, उसमें तो हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं ना, वहां केवल सरकारी सदस्य ही नहीं है जिन्होंने सरकार बनाई है, हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, भैया उनको किसने चुना है? हमारे देश के लोगों ने ही चुना है, उसी राज्य के लोगों ने चुना है। ठीक है, उन्हें उन पार्टियों के जो आदर्श थे वो ज्यादा सही लग रहे थे, उन्होंने उनको चुन दिया। तो क्या आप उनको खारिज कर देंगे? उनको खारिज कर देंगे तो पता लगा आप अपने राज्य के लोगों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, तो आपको उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए सदन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया हमारी सरकार को। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं, आप देखिए उनका बकायदे घोषणा पत्र होता है, वो जनता से जाकर के वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे आपके लिए, ये करेंगे, और पांच साल के बाद फिर जब चुनाव होता है तो जनता उनसे मांगती है कि भैया आपने तो ये कहा था तो हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। तो ये जनता के सामने जाते हैं, इसका मतलब है कि जो हमारे ये प्रतिनिधि हैं यही जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अब मान लीजिए कि ये चुनाव हो रहे हैं और ये जाकर के कह रहे हैं कि भैया हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये कानून बनाएंगे, ठीक है, उन्होंने तो कह दिया जनता के सामने कि हम ये कानून बनाएंगे। अब आकर के ये सदन में बैठ गए, अब सदन में इनको लगता है कि हां इस पर कानून बनाया जाए, ठीक है। अब जब कानून बनाने की बात आई तो अब व्यवस्था क्या है? देखिए अभी तक की जो व्यवस्था है वो ये है कि विधानसभा उसको पारित करेगी, राज्यों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, विधानसभा उसको पारित करेगी, जब पारित कर लेगी तो फिर वो राज्यपाल के पास चला जाएगा, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, वो कानून बन जाएगा। यहां राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल को रख लीजिए कि वो उपराज्यपाल के पास जाएगा और वो कानून बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय लेगी उससे पहले उसे उपराज्यपाल के पास भेजना होगा, कोई भी निर्णय लेने से पहले, और फिर उपराज्यपाल उसको स्वीकृति देते हैं या नहीं देते हैं वो उपराज्यपाल के पास है। इसका मतलब है कि पार्टियां कह के आई पब्लिक को कि भई आप देखिए हम आपके लिए ये कानून बनाएंगे, आने के बाद वो कानून बना दिया गया, बनाने से पहले ही आपने उपराज्यपाल के पास भेज दिया और पता लगा कि जो उपराज्यपाल है वो केंद्र का प्रतिनिधि तो है ही, लेकिन जो केंद्र में पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। जैसे कि अभी दिल्ली में, अभी वर्तमान में लीजिए तो वर्तमान में दिल्ली में आपकी सरकार है और आप देखिए कि कितनी बहुमत की सरकार है, कुल 70 सीटों में से शायद 62 सीट्स आपके पास है, यानी कि इतना जबरदस्त समर्थन इस पार्टी को दिल्ली के लोगों का है। लेकिन केंद्र में एलाइड गवर्नमेंट, मतलब आप कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है, तो उपराज्यपाल किसका प्रतिनिधि हुआ? केंद्र सरकार की पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व हुआ। तो अब आप सोच करके देखिए कि इससे क्या संकट आ सकता है। तो क्या उपराज्यपाल जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकता है? और अगर जनता के प्रति उत्तरदायी है तो फिर इस निर्वाचित सदन की उपयोगिता क्या है? ये अगला सवाल है। तो दोस्तों आपको जो तैयारी करनी है वो इन दो पॉइंट्स को लेकर के करनी है और दो पॉइंट्स के आधार पर आप कुछ जो प्रोविजंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा नोट कर लीजिए और नोट करके थोड़ा सा रट लीजिए। जैसे कि 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए बकायदे जो अनुच्छेद है 239AA व्यवस्था की गई और उसके तहत दिल्ली में बकायदे इस राज्य सरकार की स्थापना या स्टेट बना। और इसके बाद अभी भी, यानी कि इस अमेंडमेंट से पहले भी, तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है। उसमें से एक है लैंड के मामले को लेकर के, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और तीसरा है पुलिस को लेकर के। ये तीन मामले अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अब सारे मामले आप उनके हाथ में दे देंगे तो सच पूछे तो निर्वाचित जो सरकार है वो कैसे काम करेगी, उसकी व्यावहारिकता पर विचार किया जाना जरूरी है। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के खासकर ये जो विधेयक पेश किया गया है, विरोध भी इसका किया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको इस विषय के बारे में नहीं बताया है, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस विषय की आप तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। हमारी फ्रेंड्स जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, जो 17 से 31 अक्टूबर के बीच हो रही हैं, उसके लिए आशीष कुमार ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जो सिवान बिहार से हैं। आशीष आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कमलजीत कौर जी ने अपना दाखिला लिया है। कमलजीत जी आपका भी स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं सृष्टि दहाले, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से और राजेश कुमार गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।